वहीं अबीर पर अरमान की किसी बात का जरा सा भी असर नहीं था। अब आगे आहान तुरंत एक बार फिर ध्रुव के कानों के पास झुकते हुए फुसफुसाया, वैसे यार मानना पड़ेगा, भले ही अरमान भाई की यादें चली हों, लेकिन आज भी इनकी दीवानगी आस्था भाभी के लिए कम नहीं हुई है। उसने इतना कहा ही था कि इतने में उसे आकाश और सुमित की सख्त आवाज़ सुनाई देती है। सुमित ने अरमान को सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा, अरमान तुम अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम जानते हो ना तुमने ब्लैक डेविल के खास आदमी रॉकी को मार डाला है। इसका मतलब समझते हो? अगर ब्लैक डेविल किंग को इस बारे में जरा सी भी भनक लगी तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा और वो हम सब पर हमला करने की कोशिश करेगा। तभी आकाश बात आगे बढ़ाते हुए बोला, हाँ अरमान, सुमित बिल्कुल ठीक कह रहा है। भले ही तुम्हें ये बात याद नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारे बेटे अंश सिंघानिया को भी घर से अगवा करने की कोशिश की थी और उस वक्त तुमने उसके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया था। आकाश और सुमित जानबूझकर यहाँ पर सारी बातें अरमान को बताने से बच रहे थे ताकि वह अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालें। अरमान ने उन्हें काफी देर तक घूरने के बाद कहा, मैं जानता हूँ कि अंश के किडनैप होने के बाद मैंने क्या किया था। अरमान की आवाज़ में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उसकी आंखों में आग साफ दिखाई दे रही थी। उसने कुर्सी से उठते हुए गंभीर स्वर में अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और मुझे ये भी पता है कि ब्लैक डेविल मुझे बर्बाद करने के लिए किस हद तक गिर सकता है। अरमान के शब्दों से स्टडी रूम में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया था। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस घड़ी की टिक टिक आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी आकाश के दिमाग में कुछ कौंधा, उसे अचानक किसी बात का एहसास हुआ। उसने धीमी आवाज़ चिंता जताई, लेकिन अरमान तुम्हें इस बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है, अगर तुम इस मामले की गहराई में गए तो तुम्हारी दिमागी हालत बिगड़ सकती है। इतना कहते ही आकाश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अरमान ने आकाश की ओर नज़रें घुमाई और काफ़ी सख्त लहजे में उससे पूछा, क्या सच में मेरी हालत बिगड़ सकती है या फिर तुम सब लोग मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं? इतना कहने के बाद अरमान ने आगे कहा, उस ब्लैक डेविल ने सोचा है कि अगर अरमान सिंघानिया यादें चली जाने से वो टूट जाएगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इतना कहकर अरमान और भी ज्यादा सीरियस हो गया था और अगले ही पल उसकी वो सीरियसनेस गुस्से में बदल गई थी। ध्रुव ने आगे बढ़कर अरमान से कहा, भाई हम सब आपके साथ हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आस्था भाभी की सेफ्टी है। आस्था का नाम सुनते ही अरमान का चेहरा एक पल के लिए बदला, उसकी आंखों में कुछ ना समझ आने वाली बात थी। अरमान धीमी आवाज में, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं इस दुनिया को जला दूंगा। उसी वक्त दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई, दरवाजा खुला और आस्था अंदर आई। कहीं न कहीं आस्था ने अरमान की लास्ट वाली लाइन सुन ली थी, जिसे आस्था के दिल में एक प्यार भरा एहसास तरोताजा हो गया। लेकिन आस्था को वहां देखकर अरमान तुरंत ही हड़बड़ा गया। वहीं अबीर ने आस्था को वहां देखकर पूछा, अरे बटरफ्लाई, तुम यहां क्या कर रही हो? इस बात पर आस्था एक पल के लिए फ्रीज हो गई थी। उसने नहीं सोचा था अबीर उससे ये सवाल पूछ बैठेगा। वहीं अबीर झट से अपने इमोशंस को छुपाते हुए फिर से बोला, आस्था तुम यहां क्या कर रही हो? तभी अविनाश आगे बढ़कर आस्था के पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? आस्था ने हां में गर्दन हिलाई, फिर कुछ पल की खामोशी बाद वो मुस्कुराई। अरमान ने भी आस्था की ओर तिरछी नजर डाली, लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी आहान और ध्रुव एक साथ बोले, क्या बात है भाभी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, बताइए ना भाभी, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं? उनका सवाल सुनकर आस्था ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए हां में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो हम आप लोगों को ये बताने के लिए आए थे कि रश्मि दीदी को यहाँ घर पर छोड़कर हम सब लेडीज एक साथ मिलकर नानी माँ से मिलने के लिए मामा जी के घर जा रहे हैं। जी हाँ, रौनक ने कोई और आइडिया नहीं दिया था, बल्कि नानी माँ से मिलने का बहाना ही बनाया था। वहीं आस्था के शब्दों को सुनकर आहान को तगड़ा झटका लगा था। उसने फौरन रिएक्ट करते हुए कहा, क्या? लेकिन भाभी, रौनक इस कंडीशन में कैसे जा सकती हैं? आप जानती हैं ना मेरी प्रिंसेस अभी कितनी ज्यादा छोटी है। इस पर आस्था अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए जल्दी से बोली, आहान भैया, रौनक को भी नानी माँ की याद आ रही है, उसे भी उनसे मिलना है। इनफैक्ट उसी ने हमें ये आइडिया दिया है, मैंने उसे काफी बार मना भी किया था, लेकिन आप तो जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा जिद्दी है और नानी माँ से कितना प्यार करती है, इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि हम सब मिलकर नानी माँ को सरप्राइज देंगे। और वैसे भी मेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा फ्रेश माहौल चाहती हूँ, दूसरी जगह जाकर थोड़ा बेटर फील करना चाहती हूँ। आस्था आहान और ध्रुव से शांति से बात करने की हर संभव कोशिश कर रही थी। उसकी मोटी मोटी आंखों के नीचे हल्की सी परछाई सी बन रही थी। उसकी आंखों को देखकर कोई ये नहीं पता लगा सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो अचरज के साथ उनको देख रही थी। वहीं अरमान ने आस्था की मासूम शक्ल देखकर उसे कुछ भी कहने की इच्छा दबा दी। एक पल के लिए आस्था की भी नजर अरमान पर जाकर ठहर गई थी।
आस्था का दिल कर रहा था कि वो दौड़कर अपने पति के पास जाए और उसे कसकर गले से लगा ले। वहीं अरमान अपनी गहरी नजरों से लगातार आस्था को एकटक घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आस्था के इरादों को भांपने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन तभी अबीर तुरंत उसके बीच में आकर खड़ा हो गया और आस्था को देखकर बोला, ओह अच्छा, दो चार घंटे की बात है तो चली जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। और जब तुम सब लेडीज का वहां से आने का मन हो, आप लोग हमें फोन कर देना, ठीक है, हम सब आपको लेने के लिए वहां आ जाएंगे। वहीं अरमान ने आस्था की बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और बाकी सब लोगों की ओर देखते हुए सीधे मुद्दे पर आकर बोला, आप सब लोगों को मैंने जो जो काम सौंपा है वो काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। इतना कहने के बाद अरमान बिना किसी को कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। अरमान के पीठ जाते देख आस्था देर तक सन रहकर खड़ी रही। कहीं ना कहीं आस्था को लग रहा था वो कितना हार्टलेस है, उसके लिए आस्था की फीलिंग कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन फिलहाल अब देर न करते हुए थोड़ी देर बाद वो सीधा क्लब की ओर बाकी सब लड़कियों को लेकर रवाना हो चुकी थी। वहीं अरमान भले ही आस्था को बिना कुछ कहे वहां से निकल चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ रहस्यमयी से एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी ओर आस्था और बाकी सब लड़कियों ने अपने साथ एक एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े क्लब में जाने के लिए चुपके से रख लिए थे और घर से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उन सब ने कार में ही एक एक करके कपड़े चेंज करना और मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि इस सिचुएशन में कपड़े चेंज करते हुए सबको बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी कि वो किस तरीके से कार के अंदर कपड़े चेंज कर रही हैं। उन्होंने एक दूसरे के चेहरे को देखते हुए हल्की सी मुस्कान दबाई और फटाफट जैसे तैसे अच्छी तरह से अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वहीं रौनक आस्था के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर एकदम से बोली, आस्था प्लीज अब तुम्हें इस तरह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम देखना आज हम सब मिलकर झंडे गाड़ देंगे। और हाँ, एकदम से तुम उस डेविल किंग को मारना पीटना शुरू मत कर देना। मेरा मतलब है हमें उस डेविल किंग के सामने अपने दिल में दबे हुए गुस्से को शांत रखना होगा। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, पता चला कि तुम वहीं उसे ठोक ठोक कर या उसका भेजा उड़ा कर आ जाओ।
तुम्हें अपने गुस्से और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन पर पूरा कंट्रोल करना होगा। तुम इस तरीके से वहां अग्रेसिव बिहेव रखकर नहीं जा सकती। जोश में हम अपने होश नहीं खो सकते, वरना हमारा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और वैसे भी उस राजवीर जिंदल का कोई भरोसा नहीं है। वो भले ही अभी कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन हम सब जानते हैं उसके दिमाग में कुछ तो खुफियापंथी चल रही है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जैसे ही आस्था ने रौनक के मुंह से ये शब्द सुने तो उसने पलकें झपकाई, फिर बेरुखी से मुस्कुलाते हुए बोली, हाँ मैं समझ गई हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। तुम देखना, मैं उस डेविल किंग को हर हाल में सबक सिखाकर रहूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे किसी भी तरह से उस घटिया इंसान को बहला फुसलाकर अपने लिए डार्क विला में जाने का रास्ता बनाना होगा, क्योंकि उस डार्क विला में एंटीडोट ही नहीं बल्कि मेरा एक खास मकसद भी मौजूद है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आस्था के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि उसकी बातें बहुत रहस्यमयी थीं। फिलहाल थोड़ी देर बाद सभी लड़कियां एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी थीं। हालांकि उन्होंने पूरे ओपन वाले कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन उन्होंने वेस्टर्न कपड़े इस तरह से पहने थे कि कोई भी उन्हें ये नहीं कह सकता था कि ये सारी लड़कियां शादीशुदा थीं या फिर गांव की घरेलू या बहनजी टाइप की दिखती हैं। वो सब एक से बढ़कर एक अच्छी तरीके से तैयार हुई थीं और अब सब निश्चिंत होकर उन्होंने एकदम बोल्ड लिपस्टिक लगा रखी थी, जिसमें सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत अप्सरा लग रही थीं। वहीं एंजल, जो पहले से ही फॉरेनर जैसी दिखती थी, जिसे इंडिया में घूमने फिरने का बड़ा शौक था, वो चहकते हुए चंचलता से बोली, देखो मैं इस तरह से छिपकर पहले कभी बाहर नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज आप सब लड़कियों के साथ इस तरह से जाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मुझे पहले से ही बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। जैसे ही एंजल ने अपनी टूटी फूटी हिंदी भाषा में अपनी एक्साइटमेंट जताई तो वैसे ही सभी लड़कियाँ मुस्कुरा देती हैं। जल्द ही सभी लड़कियाँ एक साथ नाइट क्लब में जा पहुँची थीं। वहीं दूसरी ओर सम्राट ऑलरेडी संजना को डार्क विला में छोड़कर नाइट क्लब में आ चुका था और वो उसी चेयर पर जाकर बैठ गया जहां पर हमेशा उसका वफादार असिस्टेंट रॉकी बैठा रहा करता था। वहां जाकर उसने अपनी शर्ट के दो बटन खोले और नाइट क्लब में अपनी नजरें दौड़ाते हुए यहां वहां देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी सस्पिशियस या अलग नहीं लगा था। वहीं आस्था और बाकी सारी लड़कियां अब धीरे धीरे नाइट क्लब के अंदर एंट्री लेने लगी थीं, लेकिन मारिया बाहर ही ब्लूटूथ के थ्रू उनसे कनेक्ट थी, क्योंकि कुछ वक्त पहले मारिया उनके साथ ही आना चाहती थी। लेकिन फिर उन्हें ये लगा कि अगर उस ब्लैक डेविल को अरमान के बॉडीगार्ड के बारे में सारी नॉलेज हो सकती है, इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मारिया ने बाहर ही रुकना बेहतर समझा। लेकिन वो आस्था और बाकी सबसे कनेक्टेड थी। नाइट क्लब का शोरगुल उन सबके कानों को पूरी तरह से अफेक्ट कर रहा था। तब आस्था ने हल्की नाराजगी से रौनक को घूरते हुए कहा, मैंने आप लोगों को मना भी किया था कि यहाँ बहुत शोरगुल होगा, जो तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। पता है, अगर नानी माँ को पता चल गया कि तुम्हारे रेस्ट का पूरा टाइम पीरियड पूरा होने से पहले पहले हम यहाँ इस शोरगुल के माहौल में नाइट क्लब में नचाने के लिए लेकर आए हैं, तो वो हमारी क्लास लगा देंगी, वो भी बढ़िया वाली। आपने सोचा भी है हमारे बारे में? आपको नहीं पता, नानी माँ जब भी हमें मारती थी तब हमारी कमर कितने दिनों तक दुखती थी। इतना कहने के बाद उसका मुंह बन गया था, ऐसा लग रहा था वो अब बस रो ही पड़ेगी। ये सुनकर रौनक और बाकी सबकी नजरें फैल गईं और अगले ही पल वो सब खिलखिलाकर आस्था को देखने लगी थी। वैसे तो एंजल बहुत कम हंसा करती थी, लेकिन आस्था के चेहरे की मासूमियत देखकर उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान तैर गई थी। तभी रौनक हंसते हुए फुसफुसाई, इसका जुगाड़ भी हम करके आए हैं। ये देखो, ये कॉटन हम अपने कानों के अंदर लगाएंगे और हमें केवल उतना ही सुनाई देगा जितना हम बेयर कर पाएंगे, तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहने के बाद रौनक के होंठों पर एक शरारती स्माइल खिल रही थी। रौनक की बातें सुनकर आस्था की आंखों में सिर्फ सरप्राइज था और कुछ नहीं। आस्था फिर मजाकिया अंदाज में उसे बोली, अरे वाह, तुम तो बड़े चालू हो गई हो। चलो ठीक है, संगति का ही असर है। ये कहते हुए आस्था और बाकी सब मुस्कुराकर अब नाइट क्लब के अंदर आ गए थे। इधर नाइट क्लब में अंदर आने के बाद आस्था और बाकी सब ने जैसे ही अंदर एंट्री ली तो उन्होंने अच्छी तरह से ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया था मानो कि वो कोई फ्रेंड्स के सर्कल का ग्रुप हो जो कि यहाँ पर मौज मस्ती और एंजॉय करने के लिए आया हो। हालांकि उन सबकी नजरें चारों तरफ इधर उधर घूम रही थी। अब जैसे ही आस्था ने रॉकी की सीट पर सम्राट को देखा और उसके ठीक पीछे चार काले रंग के कपड़े पहने हुए उन्हीं बॉडीगार्ड्स को वापस देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि सामने बैठा हुआ शख्स असल में ब्लैक डेविल किंग है। वहीं एंजल की नजरें जैसे ही ब्लैक डेविल यानी सम्राट पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एंजल ने पहली नजर में ही सम्राट को देखते ही पहचान लिया था। वो तुरंत ही आस्था के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे एक साइड खींच कर लेकर आई। फिर उसने चुपके से ब्लैक डेविल किंग यानी सम्राट की ओर इशारा करते हुए आस्था को दबी हुई आवाज में बताया, आस्था वो देखो, ये तो वही आदमी है जिससे मैंने हमारी मदद करने के लिए हेल्प मांगी थी जब हमें मार्केट में कुछ गुंडों ने परेशान किया था तब। एंजल की बातों पर गौर करते हुए आस्था ने भी सम्राट के चेहरे की ओर आश्चर्य से देखा।